الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق الله مولانا العظيم. کافی دیر سے آپ حضرات دینی باتیں سن رہے ہیں. حضرت مولانا قاضی صاحب حضرت ذلہ العلی انہوں نے سنایا کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ظلم کرنے والے کو معاف کرو. اور زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی آپ کو دعوت دی. پھر مجدد المقاصد حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی آپ کے سامنے بہت اچھی بات سمجھائی کہ عمل سنت طریقے سے ہوگا, اخلاص کے ساتھ ہوگا تو وہ نیک عمل بنے گا. اسی لیے ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنا چاہیے اور اخلاص سے کرنا چاہیے. دعا سیکھنے کے لیے بھی انہوں نے آپ کو ترغیب دی کہ دعائیں سیکھو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا سکھلا دوں. ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے چھوٹی سی دعا پڑھ لو. دعا بہت آسان ہے, بہت چھوٹی ہے. بسم اللہ والحمد للہ پڑھو, یاد ہو جائے گی. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله. دیکھیے فرق اتنا ہے کہ پہلے میں نے وقف کر کے پڑھا, دوسرے میں وقف کیے بھی غیر پڑھا. ये वक्फ क्या चीज होती है आप समझोगे। तो कहते हैं ना स्टॉप, बस स्टॉप है, ट्रेन का स्टॉप है। इस तरह कुरान और हदीस के अंदर भी कुछ स्टॉपेज आते हैं, कोई बड़ा स्टॉप होता है, गांधीधाम जैसा कि वहां पूरा इंजन आगे पीछे हो जाए, कुछ छोटे छोटे स्टॉप होते हैं। और एक होता है विनंती बस स्टॉप, आपने पढ़ा होगा रास्ते पर मोड़ लगा लेता है विनंती बस स्टॉप। तो इस तरह कुरान के अंदर भी बड़े स्टॉप भी है, छोटे स्टॉप भी है, स्टॉप करो तो चले ना करो तो चले ऐसे भी है, उसको वक्त पकड़ते हैं। और ये वक्त कुरान में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। बाज मरतबा गलत जगह वक्फ करने से, ठहरने से पूरा माना बदल जाता है। जैसे कुरान में एक आयत में अभी आपके सामने पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाह, वक्फ कर दिया, गलत जगह वक्फ किया। तो मायना क्या होगा आयत का, ईमान वालों नमाज के पास भी मत आओ, पढ़ने का तो नहीं पास भी नहीं आने का, कितना डेंजर माना हो गया। और अगर सही जगह तुम स्टॉप करोगे, वक्फ करोगे, तो मायना सही होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ये सही वक्त हुआ, स्टॉप सही हुआ। ए ईमान वालो, नशा करके शराब पी करके नमाज के करीब मत आओ। ऐसे ऐसे कुरान के अंदर डेंजर स्टॉपेज भी है और सही स्टॉपेज भी है, उसी को वक्त कहते हैं। अब आप सीख कहोगे कि ये सब कैसे हमको आ गए, तो उसके लिए आपको मकतब में मदरसे में आना पड़ेगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ उस्ताद सिखाएंगे वक्त कहा करने का, वक्त कहा नहीं करने का। और आदमी कंप्यूटर सीखने जाने में शर्म नहीं करता तो कुरान सीखने में शर्म कैसी करने की, बड़ी उम्र हो गई, जरूरत पड़ती है तो आदमी नई नई चीजें सीखता है। तो कुरान भी सीखो। और कुरान सहाबा ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने, कहो रजी अल्लाह, उन्होंने बड़ी उम्र में सीखा, बचपन में नहीं गए थे मदरसे में। हजरत अबू बकर भी नहीं गए बचपन में, हजरत उमर भी नहीं गए, हजरत उस्मान भी नहीं गए, हजरत अली भी नहीं गए रजी अल्लाह, बचपन में मदरसे में गए नहीं, इसलिए तो मदरसा था ही नहीं बचपन में, इसलिए बड़ी उम्र में गए मदरसे में, लेकिन कुरान सीखा उन्होंने। इसलिए बाल सफेद हो गए, कमर कमान की तरह झुक गई, लेकिन कब्रिस्तान जाने से पहले कुरान सही सीख लो, ये हर मुसलमान के लिए फर्ज है, मामूली बात नहीं है, फर्ज है, खुदा का हुक्म है। वरतिल कुरान तरतीला, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान ऐसे पढ़ो ठहर ठहर के इत्मीनान से, सही सही कुरान पढ़ो। इसके लिए मदरसे में आना पड़ेगा, मकतब में आना पड़ेगा, और अपने बच्चों को भी भेजना पड़ेगा। तो मैं आपको दुआ याद करा रहा था, वुज़ू से पहले क्या पढ़ने का, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो याद हो जाएगी। ये दुआ का फायदा बताऊं, सवाब कितना बड़ा है। जो आदमी ये दुआ पढ़ के वुजू करे तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उसका वुजू रहेगा वहां तक अल्लाह का फरिश्ता उसके लिए लगातार नेकी लिखता रहेगा, सवाब लिखता रहेगा। अगर तुमको अभी कोई कह रहे कि तुम जितनी देर खड़े रहोगे एक सेकंड में आपके लिए एक रुपया लिखा जाएगा तो आदमी कहेगा बहुत अच्छा, पूरा घंटा खड़ा रहूंगा मुफ्त में 60 रुपये मिलते हैं। और कोई कहे कि एक सेकंड के 100 रुपये मिलेंगे, खलास फिर तो। तो जो आदमी ये दुआ पढ़ के वुजू करे जब तक उसका वुजू होगा, हदीस में फरमाया कि उसके लिए अल्लाह का फरिश्ता मुसलसल लगातार नेकी लिखेगा, सवाब लिखेगा। इसलिए क्या पढ़ोगे वुजू से पहले? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। और ये सवाब तुमको अकेले को चाहिए कि दूसरों को भी दिलवाना है? दिलवाना है ना दूसरे को। तो अभी घर जाके ईशा पढ़ के पहले बीवी को ये दुआ याद कराना, कहो इंशाल्लाह, ताकि उसके लिए भी सवाब लिखा जाए। तुम अकेले जन्नत में नहीं चले जाओ। तो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, ऐसे किस्सा बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत छोटा करके आपको बताया। एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, रईस आदमी, पैसे वाला, और कितना बड़ा मालदार आदमी, कितना बड़ा मालदार आदमी कि उसके कबाट की चाबी उठाने के लिए पहलवान की टीम चाहिए। पैसे उठाने के लिए नहीं, जिस कबाट में पैसे रखते थे, जिस खजाने में पैसे रखते थे, उसकी चाबी उतनी ज्यादा थी कि उसको उठाने के लिए पहलवान की टीम चाहिए। इतने ज्यादा कबाट थे, अंदाजा लगाओ कितने कबाट होंगे उसके पास, खजाने होंगे। क्यों कबाट इतने ज्यादा, इतने ज्यादा तो उसकी चाबी भी इतनी ज्यादा कि आदमी चाबी नहीं उठा सकता, तो पहलवान की टीम चलती थी साथ में, जाड़े जाड़े बॉडी बिल्डर सब चलते थे चाबी लेके। और ये कुरान में है, मैं नहीं कह रहा। मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बति उली कुव्वा। ताकतवर टीम चलती थी चाबी लेकर। और सुनो इल्म वालों, हाफिजों, आलिमों, मौलवियों, ये सिर्फ मालदार नहीं था बल्कि उस जमाने में अल्लाह की किताब तौरात का हाफिज था वो। जैसे आजकल कुरान के हाफिज और आलिम होते, उस जमाने में अल्लाह की किताब तौरात थी तो वो तौरात का हाफिज और आलिम था। इतना बड़ा ऊंचा मकाम, माल वाला भी और हाफिज भी तौरात का। जैसे आज कुरान है, वो जमाने में तौरात थी। और एक ऐसी उसको खुश नसीबी मिली, ऐसा चांस मिला, ऐसा मौका मिला कि जो इस दुनिया में इंसानों को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, ऐसा चांस मिला है। क्या चांस मिला? दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की बात सुनने का मौका मिला। दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बात सुनने का मौका मिला। सित्ते आदमी ऐसे थे, उनको हजरत मूसा अलैहि सलाम तूर पहाड़ पे ले गए थे खुदा की बात सुनने के लिए, और डायरेक्ट लाइव अल्लाह की बात सुनाई उन सित्ते आदमियों को मूसा अलैहि सलाम ने। उन सित्ते आदमियों में ये मालदार हाफिज साहब भी थे। मालदार भी है, تورات کا حافظ بھی ہے اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات سنی. کتنا بڑا آدمی ہوگا اندازہ لگا. لیکن مسلمانوں ایک نصیحت یاد رکھنا, اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عطا کرنا. کہو نا آمین. پوری دنیا کے ہر مالدار کو اللہ عطا فرمائے. مال دولت جو ہے نا دکھلانے کی چیز نہیں ہے, چھپانے کی چیز ہے. سن لو اچھی طرح, دو چیز کبھی کسی کو مت دکھانا, دولت عورت. دولت عورت کسی کو مت دکھانا, ورنہ دونوں کے لٹیرے اور گنڈے ہوتے ہیں. آپ سنتے ہیں, پیپروں میں پڑھتے ہیں, نیوز میں پڑھتے ہیں, میاں بیوی کہیں گھومنے گئے, بیوی پر ریپ ہو گیا, زبردستی زنا ہو گیا, شوہر کچھ نہیں کر سکا. دولت اور عورت کسی کو دکھلانے کی چیز نہیں ہے, ورنہ جو دکھلایا تو فتنے آئیں گے, یاد رکھ لو. اور اہم بات کہوں آپ کو, مسلمانوں اللہ دولت دے رہے نا, تو اس دولت کو غلط جگہ کے اوپر خرچ کر کے اپنی دولت کی طاقت لوگوں کو بتانے کی کوشش مت کرنا. غلط جگہ خرچ کر کے اللہ دولت دے رہے, پیسہ دے رہے اللہ تعالی, تو اس منی پاور کا شو مت کرنا, دکھلاوا مت کرنا کہ میں بہت مالدار ہوں, بہت پیسے والا ہوں. اور آج مسلمانوں نے اپنی شادیوں کو, اپنی عمارتوں کو پیسوں کو دکھلانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. پیسہ آتا ہے تو کہ میں بڑی شادی کروں گا, بڑی دعوت کروں گا, شاندار بلڈنگ بناؤں گا, شو کروں گا اس میں. آج مسلمان نے پیسوں کو شادیوں میں, عمارتوں میں دکھلانے کا ذریعہ بنا دیا. دونوں چیز بری ہے. ضرورت کے مطابق مکان بناؤ, فیسلٹی والا بناؤ, مضبوط بناؤ, سہولت والا بناؤ, لیکن دکھلاوے والا مت بناؤ. اللہ فرماتے اتبنون بکل ریعن آیتن تعبتون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. حویلیاں بناتے ہو, بلڈنگیں بناتے ہو, بنگلے بناتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کوٹھیوں میں رہنا ہے, بلڈنگوں میں رہنا ہے, کبھی یہاں سے جنازہ نکلنا نہیں ہے, ایسی حویلیاں بناتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اور آج شادیوں میں مسلمان لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے, لاکھوں روپیہ. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا, جس نکاح میں خرچہ کم, تکلیف کم, دوڑ دھوپ کم, محنت کم, وہ نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی. بھائیو نیت کرو, آج جمعہ کا دن ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ شادیوں کو سمپل طریقے سے کریں گے, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق. پیسے کوئی شادی کے لیے ہیں کہ میں مالدار ہوں اس لیے دکھاوا کروں؟ نہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے سمپل سادگی والی شادی کرنا, اس لیے ہم سمپل نکاح کرتے ہیں. تم کیا مالدار ہو؟ مجھے معلوم ہے سچ والے بہت مالدار ہیں ماشاء اللہ, لیکن تم سے بڑے مالداروں کو میں جانتا ہوں, ایسے ایسے مالدار کو جانتا ہوں کہ تمہارے یہاں جنگل کے اندر لکڑے کاٹتے ہیں, کیسے کاٹتے ہیں؟ ارے بولو تو, उर्दू समझते हो ना, कुल्हाड़ी से काटते हैं ना। कभी ऐसा सुना कि सोना चांदी कुल्हाड़े से काटा हो? सुना ऐसा कभी? अरे सुना, आपके यहाँ सुनारे लोग भी है कच्छ में, कभी देखा कि सोना चांदी कुल्हाड़े से काटते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जिस इंसान का इंतकाल हुआ, मौत हुई, और उसने जो माल छोड़ा था, दौलत छोड़ी थी, जब उसको तकसीम करने बैठे तो इतना सोना था, इतनी चांदी थी कि कुल्हाड़ा लाकर काट काट के उसको तोड़ना पड़ा। कितने बड़ा मालदार होगा वो इंसान, और वो मालदार इंसान इतना मालदार, लेकिन उसकी शादी कैसी नहीं बदलाओ। वो मालदार आदमी के जिसके मरने पर सोना कुल्हाड़े से काट काट के तकसीम किया, जब उस मालदार आदमी की शादी हुई है, मदीने पाक में शादी हो रही है, तो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लेकिन इतनी सिंपल शादी हुई कि हुजूर को भी खबर नहीं हुई। इतनी सिंपल शादी हुई, वो तो शादी की रुखसती की, और उस जमाने के अंदर मदीना के अंदर दुल्हन एक खुशबू लगाती थी कलर वाली, औरतों की खुशबू कलर वाली होती, खुशबू नहीं होती कलर होता, तो कलर जो है ना उनके कपड़े पर लग गया। अब जो लग गया तो आपस में एक दूसरे को लोग पूछते हैं, जैसे कुंवारा लड़का हो और उसके कपड़े पर औरत का बाल हो तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या गड़बड़ है, तेरी तो शादी हुई नहीं, तेरे बदन पर औरत का बाल कहां से आया? तो औरत रुखसती हुई और औरत के बदन पर से खुशबू का धब्बा लगा उस शौहर के कपड़े के ऊपर। और वो जमाने के दूल्हे कैसे थे बताऊं आपको? आज रात रुखसती हुई, पहली रात बीवी के साथ गुजारी, फिर भी फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते थे। फजर की नमाज कहाँ पढ़ते थे? अब तो दूल्हे दुल्हन को लोग ऐसे बिठा देते जैसे पुतला बिठाया हो, दोपहर से नेला धुला के कपड़े पहना के पुतले की तरह। अरे नमाज फर्ज है क्या नहीं उसके ऊपर? नमाज उसको नहीं पढ़नी? पढ़ाओ उसको नमाज, क्यों नहीं पढ़ाते उसको नमाज? तो वो जमाने के दूल्हे नमाज में आते थे तो आए नमाज में, और हुजूर की मजलिस में बैठे तो मालदार आदमी अल्लाहु अकबर, अल्लाह कयामत में उनके साथ हमारा हश्र फरमा। उस मालदार आदमी का नाम है हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला। तो फिर हुजूर ने उनको पूछा ये खुशबू कहां से आई? तो कहा कल मेरी शादी हुई और रुखसती करके मैं आ रहा हूं। एक मालदार आदमी और एकदम सिंपल निकाह के हुजूर को भी पता नहीं है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलौ बिशात, वलीमा करो, एकात बकरी काट के वलीमा करो। क्या फरमाया? एकाद बकरी काट के वलीमा करो, बस ये सुन्नत इतना ही, एक बकरी काट देने की, इससे ज्यादा नहीं, जितने आदमी खा ले रहे। अब चाहे तो पाइप से पानी छोड़ो या बगैर पानी के बनाओ, एक बकरी जबा करके वलीमा करने का हुक्म दिया। औलिम वाला उबिशात, वलीमा करो, एक बकरी काट कर। मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी कि हम उसका दिखलावा करें शादियों में, बड़ी बड़ी दावतें करके, सिंपल निकाह करो और बिल्डिंग अच्छी बनाओ, मजबूत बनाओ, सहूलत वाली बनाओ, लेकिन उसके अंदर डेकोरेशन, दिखलावा ये नहीं है, हमारे दीन में इसकी इजाजत नहीं। अब वो मालदार आदमी जिसकी बात मैं आपको सुना रहा था, तौरात के हाफिज, मालदार और अल्लाह से बात करने का, अल्लाह की बात सुनने का दुनिया में उसको चांस मिला, उस आदमी ने एक दिन जो है ना रैली निकाली, इलेक्शन के जमाने में रैली निकलती है ना टिप्पणी के जमाने में, तो उसने भी जुलूस निकाला और जुलूस के अंदर जाफरान, जाफरान समझते हो केसर कहते हो, जाफरान का कलर बनाया। तुम तो ये चीज बहुत समझते हो कलर कैसे बनाना, तो जाफरान का कलर बनाया और जाफरान के कलर से कपड़े रंगे और कपड़े रंग करके खुद भी पहने और पूरी रैली में आने वाले तमाम इंसानों को जाफरानी कपड़े पहनाए। कैसी जाफरान की महक हो रही होगी और सोने चांदी के जीन लगाकर सवारियों पर निकले लोगों को पैसे दिखाने के वास्ते कि मैं बड़ा मालदार हूं। अब लोग उसको नसीहत कर रहे हैं, पांच नसीहत अल्लाह ने की माल वालों को कुरान में इस आयत में, इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, इतराओ मत, बहुत ज्यादा गलत तरीके से खुश मत हो, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करते। देखो भाई माल मिले ना तो उस माल को खुदा का फजल समझना, क्या समझोगे, अल्लाह का फजल, हाजा मिन फजलि रब्बी लियब्लुअनी अशकुरु अम अकफुर, ये मेरे अल्लाह का फजल व करम है, ये माल खुदा का फजल है, यानी कि पेड़ी में से मिला, कारखाने में से मिला, मेरे बिजनेस में से मिला, नहीं, हाजा मिन फजलि रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल। जो आदमी उसको अल्लाह का फजल नहीं समझता, अपना कमाल समझता है, वो है इतराने वाला, जिससे मना किया गया। इज قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين, इसीलिए जो माल मिले, दौलत मिले, रुपया मिले, पैसा मिले, उसको क्या, अल्लाह का फजल समझना, अपना कमाल मत समझना। दूसरी नसीहत, इज قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة, अल्लाह ने जो माल दिया इस माल के जरिए आखिरत कमा लो। ये माल खुदा ने दिया है किसके लिए, आखिरत कमाने के वास्ते, खुदा की बैंक में जमा करा दो, और माल के जरिए आखिरत कैसे कमाओगे, मस्जिद में लगाओ, मदरसों में लगाओ, मकतब में लगाओ, हॉस्पिटल में लगाओ, यतीम मिस्कीन बेवाओं पर लगाओ, कैदियों पर लगाओ, ये खुदा की बैंक में जमा हो जाएगा और वो आपको अल्लाह के यहाँ काम आएगा। नियत करोगे इंशाल्लाह दीन के लिए माल खूब खर्च करेंगे, वो अपना है, जो अल्लाह के लिए खर्च किया ना वो अपना, अपना कितना बताऊं आपको, आपका अपना पैसा कितना बताऊं, सुनना हदीस में, मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूल इब्नु आदम माली माली, इंसान कहता है मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा कितना, सुन लो अच्छी तरह, अपना कितना, कमा अकलता, जो तुमने खाया पिया वो तुम्हारा, इसीलिए अल्लाह पैसा देवे ने तो अच्छा अच्छा हलाल तरीके का खाओ पियो। बाद लोग पैसे मिलने के बावजूद ऐसे मक्खी चूस होते हैं, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, दोनों काम है, खाते भी नहीं खिलाते भी। अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हारा कितना, का जितना तुमने खाया पिया खत्म कर दिया वो तुम्हारा, खाओ अल्लाह ने दिया है तो अच्छा अच्छा खाओ, हलाल तरीके से खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो। दूसरी बात तुम्हारा कहना, मा अकलत व मा लबिस्त फअबलैत, जो पहन कर पुराना कर दिया वो तुम्हारा, जो पहन लिया वो तुम्हारा, अच्छा पहनो, अल्लाह ने दिया है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खुदा ने दिया है तो शरीयत के तरीके से। और अच्छा कपड़ा बतलाऊं आपको, अमल करोगे अच्छे कपड़े पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा के लिए मुर्दा के लिए सफेद कपड़े को पसंद फरमाया। कौन से कपड़े को? मुर्दों के लिए भी, जिंदों के लिए भी। कभी आपने देखा मुर्दे को रंगीन कफन दिया हो? देखा कभी आपने? अरे जो कोई दे मुर्दे को रंगीन कफन, तो हमारे दारुल भूज में फतवे के सवाल चालू हो जा रहे कि हमारे यहाँ इसने रंगीन कफन पहनाया, हुआ कि नहीं हुआ, कब्र खोदने की नहीं खोदने की, दोबारा निकालने का कि नहीं निकालने का, लोग सवाल पे सवाल चालू कर देते। नहीं, इतने जिंदे इंसान इतने रंगीन पहनते, कभी कोई मसला ही नहीं पूछने आता। मैं नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने जिंदा के लिए मुर्दों के लिए सफेद कपड़े को पसंद फरमाया। इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह सफेद कपड़े पहने, और वो भी नबी की सुन्नत के मुताबिक। कैसा? नबी की, हाँ कहो, सुन्नत का मीनिंग क्या है? बाद लोग ऐसा उल्टा काम करते हैं, वो उल्टा काम कभी मत करना कि पैंट ऊपर पहनते शर्ट नीचे पहनते हैं। पैंट पैंट कहाँ? ऊपर में। शर्ट कहाँ? शर्ट में क्या होता है? पैंट ऊपर में शर्ट नीचे, उसी को इंसर्ट कहते हैं। ये इस्लामी तरीका नहीं है। का अल्लाह के नबी का तरीका, उस तरीके के करीब का तरीका, बेहतरीन सफेद कुर्ता इजार पहनाओ। अगर जुमा के दिन पूरी मस्जिद सुन्नत तरीके से कपड़े पहन के आवे, इतना प्यारा नूरानी मंजर मालूम हो। नियत करो का आइंदा जुमा पूरी मस्जिद सफेद कपड़ों से भर देंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ने रोजी दी उससे आखिरत कमा लो। तीसरी नसीहत, वला तबगिल फसाद फिल अर्ध, इसकाल लहू कौमुहू ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिन अद्दुनिया। इसी नसीहत ये भी, ए इंसान दुनिया में तेरा हिस्सा कितना है वो मत भूलना, दुनिया में तेरा हिस्सा कितना वो मत भूलना। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात नकल की कि इंसान तेरा हिस्सा कितना, जो कफन तू पहन के जाएगा वो तेरा हिस्सा है, जो कफन तू पहन के जाएगा वो तेरा हिस्सा है, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ करके जाना है। इसलिए फरमाया वला तंस नसीबक मिन दुनिया, दुनिया में हिस्सा कितना वो मत बोलना अपना। इंसान की मौत होती है ना, तो मौत के वक्त दो जगह बात होती है, एक आसमान पे एक जमीन पे। आसमान पे फरिश्ते बात करते हैं, जमीन पे घर वाले बात करते हैं। दोनों की बात में बहुत बड़ा फर्क है। क्या आसमान के फरिश्ते इंसान की मौत पर यूं बात करते हैं, ये क्या लेकर के आया, यानी कितनी नमाज लाया, कितनी जकात लाया, कितने रोजे लाया, और जमीन पर रिश्तेदार बात करते क्या छोड़ के गया, क्या छोड़ के गया। दोनों जगह बात होती है, हदीस है। आसमान वाले बात करेंगे क्या लाया, जमीन वाले बात करेंगे क्या छोड़ के गया। इसलिए फरमाया वला तंस नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से कितना हिस्सा है वो मत भूलना, एक कफन साथ लेकर के जाना। और एक मसला बताऊं, तंदुरुस्ती के जमाने में सदका खैरात कर लो, अभी तंदुरुस्त हो ना तब खैरात कर लो। जो बीमारी में आदमी की मौत होती है, मरजुल मौत कहते हैं, उसमें तो सारा सदका भी कर दे मैंने, तो मसले के एतबार से कबूल नहीं होता है। कोई आदमी आखिरी दिनों में आखिरी बीमारी में वसीयत करे, मेरा पूरा बंगला, मेरी पूरी फैक्ट्री दारुलूम भूज में वकफ है, मुफ्ती साहब कहेंगे नहीं, एक तिहाई, 1/3, 1/3 बस आगे नहीं। ये मसला है शरीयत का। अभी तंदुरुस्ती में पूरा दे दो चलेगा, आखिरी बीमारी के दिन के अंदर नहीं चलेगा। इसलिए फरमाए वला तंस नसीबक मिन दुनिया, चौथी नसीहत, वआसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया माल देकर, तू गरीबों को माल देकर एहसान कर। खुदा ने एहसान किया तुझे माल दिया, अब तू गरीबों पर एहसान कर माल देकर के। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, गुनाह करके अल्लाह की जमीन पे फसाद मत कर। गुनाह सबसे बड़ा फसाद है। हम क्या समझते हैं एकाध दो दुकान टूट जावे जल जावे वो फसाद है? नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की जमीन पर गुनाह करना ये सबसे बड़ा फसाद है। सबसे बड़ा फसाद खुदा की जमीन पर गुनाह करना है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, ये पांच नसीहत की दौलत वालों को, इतराओ मत, अल्लाह का फजल समझो और दुनिया में अपना कितना हिस्सा मत भूलो, एहसान करो, आखिरत कमाओ, गुनाह करके दुनिया में फसाद मत मचाओ। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी इस जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी हमारी इस मुलाकात को बैठने कहने सुनने को अपनी रजा का जरिया बना दे। भाइयों मदरसों में मकतब में दीनी कामों में खर्च करो, यही चीज अल्लाह के यहाँ काम आने वाली है। और वुजू से पहले क्या दुआ पढ़ोगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वअस्हाबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे इस सफर को कबूल फरमा, तेरी रजा का जरिया बना दो। अल्लाह इस नूरानी मकातिब के सिलसिले को बे इंतहा कबूल फरमा, तेरी रजा का जरिया बना दे, सुबह कयामत तक उसको तरक्कियात के साथ जारी फरमा दे, हम सब के लिए उसको सदके जारिया बना दे, उम्मत की मौजूदा और आने वाली नस्लों के ईमान इस्लाम दीन की हिफाजत का जरिया बना दे। अल्लाह तेरे जितने भी बंदे उसमें लगे हुए हैं, जो माल लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सबको कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह पूरे आलम के अहले ईमान पर रहम फरमा, आफियत अता फरमा, मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, इतने फसाद से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में तमाम इंसानों और जिन्नातों को ईमान और हिदायत अता फरमा, हमारी जिंदगियों को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, हमारी नस्लों को कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पना चाही हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीइल करीम, आमीन 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 या रब्बल आलमीन। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। देखो मैं सलाम करता हूँ आप जवाब दे दो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। कोई मुलाकात कर लेना।
नमस्कार। जल्दी जाना है वरना हम खाएंगे नहीं, हम जल्दी निकल जाएंगे। आप देर करोगे हम देर खाई जाएंगे। अभी हम आगे दो और तीन पढ़ेंगे, हम पाँच मिनट में लेना खाना लगा हो जाए।
हाँ घर पे कर लेना,
गाड़ी खड़ी नहीं।